एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल।
जहाँ की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर।
जहाँ की जिंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर।
मेरा दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल बदल गया।
मेरा दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया।
प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया।
सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया।
जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया।
मेरा जीवन बदल बदल गया।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबों को नमस्कार। मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, आपके सामने फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे जब हम उसके वचनों से आज सुनते हैं और सीखते हैं। आज का मेरा शीर्षक है उसके मंदिर में। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे दुआ करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमें यह अवसर दिया कि हम तेरे पास आ सकते हैं और तेरे वचनों से सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। पिता तू हम सबों के संग हो, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो। पिता उन्हें बहुतायत से आशीष दे, हमारे मन हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे प्रेम को, तेरे वचन को समझ सके और तेरे रास्ता में चलने सके। पिता मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा से मदद कर। पिता तेरा पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेल दे ताकि हम तेरे सामर्थ से तेरा वचन को प्रस्तुत कर सकता हूँ। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। उसके मंदिर में, यह मेरा आज का शीर्षक है। यूहन्ना 2:12-13 में हम पढ़ते हैं, इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कपरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। इस यात्रा में यीशु एक बहुत बड़े समूह के साथ हो गया जो राजधानी की ओर जा रहे थे। अभी भी उसने सार्वजनिक रूप से अपने उद्देश्य के विषय में घोषित नहीं किया था और वह भीड़ के साथ बिना पहचाने घुल मिल गया था। यहूदी अगुओं ने लोगों को निर्देश दिया था कि यरूशलेम में उन्हें परमेश्वर की उपासना करने की विधि को सिखाया जाएगा। यहाँ पर फसह पर्व वाले सप्ताह में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग फिलिस्तीन के हर क्षेत्र से और यहाँ तक कि बहुत दूर दूर देशों से भी लोग एकत्रित हुए। मंदिर का पूरा आंगन लोगों की भीड़ से भर गया था। बहुत से लोग तो अपने अपने बलिदानों को लाने में असमर्थ होते थे जो उस महान बलिदान का प्रारूप होता था। लोगों की सुविधा के लिए मंदिर के बाहरी आंगन में पशुओं का क्रय विक्रय होता था। यहाँ पर हर स्तर के लोग अपने बलिदान को खरीदने के लिए एकत्रित होते थे। यहाँ पर सभी विदेशी धन को मंदिर की सिक्कों में बदला जाता था। सिक्कों के बदलने के कार्य से जो पुरोहितों को या आय का एकमात्र साधन था, उसने बहुत बड़ी धांधली और धोखेबाजी को जन्म दिया जो बहुत ही अपमानजनक व्यवहार था। पशुओं के विक्रेता मनमाना मूल्य लगाकर अपने पशु बेचने लगे और उससे जो लाभ होता उसे याजकों अधिकारियों के साथ बांट लेते जो सामान्य लोगों के मूल्य पर धनवान होते जा रहे थे। उपासना करने वालों को सिखाया गया था कि यह विश्वास रखे कि यदि बलिदान का चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो परमेश्वर की आशीष ना तो उन्हें मिलेगी और ना ही उनके देश को मिलेगी। फसह के पर्व के समय बहुत बड़ी संख्या में बलिदान चढ़ाया जाता था और मंदिर के पास इसकी विक्रय बहुत अधिक संख्या में होती थी। इस क्रय विक्रय में इतना शोर शराबा होता था कि परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आराधना नहीं बल्कि पशुओं का बाजार नजर आता था। वहां पर भाव ताव करने के ऊंचे शब्द, पशुओं के रंभाने की आवाज, भेड़ों का मिमियाना, कबूतरों के गुटुरगो और सिक्कों के झंझनाहट के शब्दों से चारों ओर जो सुनाई देते थे, इतनी अधिक गड़बड़ाहट होती थी की उपासना करने वाले व्याकुल हो जाते थे और महायाजक के उपदेशों के शब्द ईश्वर में गायब हो जाते थे। पुरोहित और अधिकारी लोग राष्ट्र के प्रति परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे। उन्हें चाहिए था कि मंदिर की सीमा को गलत उपयोग से बचाए। उन्हें लोगों के सामने आत्मसम्मान और दया का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए था। अपने स्वयं के लाभ की बातें सोचने के स्थान पर उन्हें उपासना करने वालों की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए था और उन लोगों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए था जो अपने आवश्यक बलिदानों को खरीदने में असमर्थ थे। परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लोभ ने उनके हृदय को कठोर बना दिया था। इस फसा पर वे लोग आते थे जो कष्ट उठा रहे होते थे, जिन्हें अपने दुखों और पीड़ाओं से छुटकारा पाना था। अंधे, लंगड़े, बहरे वहां पर आते थे। कोई कोई तो चरपाइयों पर लाए जाते थे। बहुत से तो अत्यंत गरीब होते थे जो परमेश्वर के चढ़ावे को खरीदने में असमर्थ होते थे। यहाँ तक कि अपने स्वयं के लिए भोजन तक नहीं खरीद सकते थे। याजकों की बातों को सुनकर ये लोग बहुत ही दुखित होते थे। याजक लोग अपनी धार्मिकता की डींग मारते थे, प्रजा के रखवाले होने का दावा करते थे, परंतु उनमें दया और सहानुभूति बिल्कुल नहीं होती थी। गरीब, बीमार, मरने की कगार पर पहुंचा हुआ व्यक्ति दया के लिए उनसे व्यर्थ में विनती करता था। उनके दुखों ने याजकों के हृदयों में कोई सहानुभूति नहीं जगाई थी। जब यीशु मंदिर में आया, उसने संपूर्ण दृश्य को देखा। उसने गलत रीति से लेन देन को देखा। उसने उस गरीबों के दुखों को देखा जो इस विश्वास के साथ आए थे कि बिना खून बहाए उनके पापों से उनका उद्धार नहीं होगा। उसने अपने मंदिर के बाहरी आंगन को भी देखा जहां अपवित्र लेन देन हो रहा था। मंदिर की पवित्र सीमा लेन देन का बाजार बन गई थी। मसीह ने देखा कि कुछ ना कुछ करना आवश्यक है। असंख्य रीतियां व विधियां वहां पर संपन्न हो रही थी जिनकी महत्वता को लोगों ने भुला दिया था और बहुत से लोगों को बताया भी नहीं गया था। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर मसीह ने अपनी खोजपूर्ण आंखों से चारों ओर के दृश्यों को देखा। भविष्य को देखने वाली आंखों से वह आने वाले समय को देखा। केवल वर्षों को ही नहीं, शताब्दियों को ही नहीं, परंतु युगों को देखा। उसने देखा कि किस प्रकार से याजक और अधिकारी वर्ग जरूरतमंदों के हक को मार देंगे और दीनों को सुसमाचार सुनाने में बाधक बनेंगे। वह देखता है कि किस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को पापियों से छिपाया जाएगा और उसके अनुग्रह को लोग व्यापार में बदल देंगे। जब वह इस दृश्य को देखता है तो उसके चेहरे पर क्रोध, प्रभुत्व और शक्ति की झलक चमक उठती है। लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। जो लोग अपवित्र व्यापार में लगे हुए थे, उनकी आंखें उसके चेहरे पर जम जाती हैं। वे उस पर से अपनी आंखें नहीं हटा पाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह व्यक्ति उनके अंतकरण के विचारों को पढ़ ले रहा है और उनके छिपे हुए मनभावों को जान ले रहा है। कुछ लोगों ने तो अपने चेहरों को उससे छिपा लिया, जैसे कि उनके बुरे कार्य उनके चेहरों पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हों और उन खोजी आंखों द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कर रही हो। गड़बड़ झाला समाप्त हो गया। लेन देन, भाव ताव की आवाजें खामोश हो गई। सन्नाटा बड़ा दुखदायी हो गया। पूरी सभा पर एक भयातुर सोच ने निमंत्रण कर लिया। ऐसा लगने लगा कि जैसे वे लोग परमेश्वर के न्यायालय के सम्मुख अपराधी के रूप में अपने कृत्यों का उत्तर देने के लिए खड़े हैं। यीशु साफ शब्दों में झनकार भरी आवाज में बोलता है। वह कहता है, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते हुए और घेरे की रस्सी को ऊपर उठाते हुए उस भावताव करने वाले समूह को मंदिर की सीमा से बाहर निकाल देता है। उन्हें मंदिर की सीमा से बाहर निकल जाने का आदेश देता है। किसी को भी साहस नहीं हुआ कि उसके अधिकार पूर्ण इस व्यवहार पर कोई प्रश्न कर सके। किसी में इतना साहस नहीं था कि उस बिखरे हुए लाभ को समेट ले। यीशु रस्सी के कोड़े से उन पर प्रहार नहीं किया, परंतु उसके हाथ में वह साधारण सा कोड़ा धधकती हुई तलवार के समान लग रहा था। मंदिर के अधिकारी, तमाशा देख रहे याजक लोग, दलाल और पशुओं के व्यापारी अपनी भेड़ों और बैलों के साथ उस स्थान से भाग खड़े हुए। केवल एक ही बात उनके दिमाग पर छाई हुई थी कि उसके कोप से किसी तरह बच निकले। यहाँ तक कि उसके चेले भी कांप उठे। वे यीशु के अचानक इस व्यवहार से आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने याद किया कि उसके विषय में तो लिखा है, तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ। यह भजन संहिता 69:9 में मिलता है। इस मंदिर की सफाई करने के साथ साथ यीशु ने अपने मिशन और अपनी मसीह होने के उद्देश्य को घोषित करते हुए अपने कार्य को आरंभ कर दिया। वे सब भीड़ वहां से भाग गए थे जो वहां व्यापार कर रहे थे। वे डरे हुए थे, लेकिन वे यीशु के अधिकार को नहीं पूछ सक रहे थे। बाद में शांत होने के बाद वे चुप होते हैं और सोचते हैं और चाहते हैं कि वे यीशु से मिले। वे उसके पास आते हैं धीरे धीरे, परंतु गंभीर विचार मग्न होकर तथा उसके प्रति घृणा भरे मन से वे लोग जो भाग गए थे वापस मंदिर की ओर आते हैं। याजकों और शासकों को डर भरा हुआ था, फिर भी वे यीशु से पूछना चाहते थे। और वे लोग आए और डर से उत्पन्न भावना के साथ उन्होंने इस प्रश्न यीशु से पूछा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? वे लोग यीशु से अपने अधिकार का चिन्ह मांग रहे थे। यीशु ने उन्हें चिन्ह दिखा दिया था। उनके हृदयों पर प्रकाश चमकाकर उनके सामने उन कामों को करके दिखाकर जो मसीह को करना था, उसने अपने चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। और अब जब वे उससे चिन्ह चाह रहे थे तो उन्होंने उन्हें एक दृष्टांत द्वारा उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दे और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु ने यरूशलेम मंदिर की ओर संकेत करते हुए कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। सुनने वालों ने जो सुना था उसका अर्थ उससे भी बहुत गहरा था। मसीह उस मंदिर की नींव और जीवन था, क्योंकि यह सारी विधियां मसीह के बलिदान की प्रतीक थी, इसलिए उससे अलग उनका कोई महत्व नहीं था। जब मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मंदिर का भीतरी पर्दा ऊपर से नीचे को फट गया। यह इस बात को उजागर करता है कि महान बलिदान पूरा कर दिया गया और इस बलिदानी सेवकाई का सदा सदा के लिए अंत हो गया। 3 दिनों में मैं उसे खड़ा कर दूंगा। उद्धारकर्ता की मृत्यु के समय ऐसा लगा कि अंधकार की शक्तियां विजयी हो गई हैं और वे अपनी विजय पर खुशियां मनाने लगे। परंतु यूसुफ की उस कब्र को तोड़कर यीशु एक विजयी के रूप में बाहर आ गया। अपनी मृत्यु और जी उठने की विशिष्टता के कारण वह उस पवित्र स्थान का महायाजक बना, उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं परन प्रभु ने खड़ा किया था। इसे हम इब्रानियों 8:2 में पाते हैं। बलिदानी सेवकाई का कार्य जो मसीह की ओर संकेत करता था वह समाप्त हो गया, परंतु अब लोगों की आंखें उस सच्चे बलिदान की ओर लग गई जो संसार के पापों के लिए बलिदान हो गया। पृथ्वी के याजकीय कार्य का अंत हो गया, परंतु अब हम यीशु को ताकते हैं जो नई वाचा का सेवक है, और नई वाचा के माध्यम यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यह प्रतिज्ञा हम इब्रानियों 7:25 में पाते हैं। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यह प्रतिज्ञा हमें इब्रानियों की पुस्तक उसका 4:14-16 में प्राप्त होती है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इस पृथ्वी पर आया और इस पृथ्वी का मंदिर को वह सफाई किया। हमारा मन में वह वास करना चाहता है। हमारा शरीर उसका निवास स्थान मंदिर होना चाहिए, इसे भी वह सफाई करना चाहता है और प्रेम और आत्मिक बातों से भर देना चाहता है। हम आए यीशु मसीह के पास और हमारे जीवन के हरेक बुराइयों और गंदगियों को निकालने दे, यीशु मसीह के आत्मा को निमंत्रण दे, यीशु मसीह को हमारे जीवन में आने दे और यीशु मसीह को वह कार्य करने दे कि वह हमारे जीवन के हरेक बुराइयों को दूर करके हमें स्वच्छ बनाए कि हम उसके वास करने के लिए हम उसे जगह दे सके। और जब यीशु मसीह हमारे शरीर में वास करता है, हमारा जीवन खुशी से भर जाएगा, आशीष से भर जाएगा और हम आत्मिक बातों में आगे बढ़ते जाएंगे, आनंदित होंगे और हम स्वर्ग के राज के लिए खुशी खुशी तैयार होंगे। परमेश्वर हम सबों के साथ हो और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आपके साथ रहे। आइए हम परमेश्वर को अपना मन हृदय सौंप दे और इस शारीरिक मंदिर को चंगाई करने दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे महानता के लिए। तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया हमें बचाने के लिए। इस पृथ्वी का मंदिर को वह साफ किया, लोगों को वह चंगाई करना चाहता था और आज भी वह हमारे हृदय में आना चाहता है, हमें चंगाई देना चाहता है और हमें साफ सुथरा करना चाहता है, हमें पवित्रता से भरना चाहता है। पिता हमारे हृदयों से हर एक बुराई और गलत दोष को निकाल बाहर कर पिता, और हमें तेरा आशीष दे, तेरा बुद्धि से भर दे और तेरा आत्मा का वरदान दे पिता। हम सबों को आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। दिखावा काम न आएगी, ये सब दुनिया तारी तेरे साथ न जाएगी।
तेरी सेवा तेरा दिखावा काम न आएगी,
यह सब दुनियादारी तेरे साथ न जाएगी। नाम की सेवा प्यारे तेरे काम ना आएगी, नाम की सेवा प्यारे तेरे काम ना आएगी। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्ग दूतों के संग आने वाला है।
बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्ग दूतों के संग आने वाला है।
एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा।
दिन जीवन बिताओ तुम,
पहले खुद अपना क्रूस उठाओ तुम, प्रार्थना में प्रतिदिन जीवन बिताओ तुम।
सेवा प्रभु की है, व्यापार ना बनाना। सेवा प्रभु की है।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।